Director of Investor Relations at Dickinson, and I'll be moderating our call today. So joining us from the management of VGL Limited is Mr. Jaimin Gupta, Chairman and Managing Director. Please note that this conference is being recorded and that some statements in this call may be forward-looking based on current expectations and subject to risks that could cause results to differ materially. I'll now hand the conference over to Jaimin to begin with opening remarks. Over to you, Jaimin.
Okay, thank you so much, Ankini. So I hereby welcome everyone on this Huawei's analyst call, and thank you everyone for attending this call. So I'll start with the introduction. So who am I, and how are we here with Huawei? So basically, I'm an MBA in finance, and I started my career almost 12 years back with textile industry itself. So in 2015, I started my retail brand by the name Barcelona. तो हमने बार्सिलोना ब्रांड शुरू किया था विद अ फोकस के हम मेंस वेयर को कैटर करेंगे। वो उसमें हमने 2025 तक, मतलब इन दिस 10 इयर्स जर्नी, वी हैव ऑलमोस्ट लॉन्च्ड 125 स्टोर्स एंड वी आर क्लॉकिंग अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन 200 CR। सो दिस वाज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस व्हिच आई वाज डूइंग बिफोर बिफोर द एक्विजिशन ऑफ हुआवे। सो ये हमारा एक रिटेल ब्रांड था, पैन इंडिया प्रेजेंस है और ऑलरेडी हमारे हमारा बहुत अच्छा कस्टमर बेस था इन द मेंस वेयर कैटेगरी। सो आई हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्सटाइल्स गारमेंट्स इन दिस 10 इयर्स जर्नी ऑफ माई बार्सिलोना। अलॉन्ग विद दिस आई वॉज ऑल्सो सप्लाइंग गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स टू मैनी डिफरेंट ब्रांड्स। वी वर टेकिंग होलसेल ऑर्डर्स, वी आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, वी आर सप्लाइंग टू द बिग रिटेल आउटलेट्स। सो ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत अच्छा रिटेल के अंदर एक एक्सपोजर दिया, टेक्सटाइल की एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग दी, हाउ गारमेंट्स आर मेड, हाउ दे आर सोल्ड एंड वॉट काइंड ऑफ फैब्रिक्स आर टू बी मेड, डिजाइनिंग के ऊपर एक कंट्रोल बनाया। सो इस तरह से ये लास्ट 10 इयर्स में आई गॉट अ गुड ग्रिप ओवर द होल टेक्सटाइल बिजनेस। देन इन 2024 सेप्टेम्बर वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्वायरिंग आरवी डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। आरवी डेनिम्स यूज टू बी इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दे हैड अ कैपेसिटी ऑफ 35 मिलियन मीटर्स इन डेनिम फैब्रिक्स एंड ऑलमोस्ट 18 मिलियन मीटर्स इन नॉन डेनिम कैपेसिटी। सो बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी हैविंग अ गुड एक्सपोजर अबाउट फैब्रिक्स, कस्टमर बेस, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एवरीथिंग, आई थॉट दिस कुड बी अ गुड एक्विजिशन। एंड द कंपनी हैड अ वेरी ह्यूज प्लांट इन नारोल। सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन इनिशियली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन सेप्टेम्बर 2024 वी डिड द डील एंड ऑलमोस्ट इन जुलाई इट टुक अस 8 to 9 months टू कम्प्लीट द होल प्रोसेस, द होल टेक ओवर प्रोसेस एंड एवरीथिंग। So it was the acquisition was backed by my internal accruals, by my family funds and some investors. So through this we acquired the whole factory. So we acquired the whole company actually along with the premises, the factory and everything. And so yeah, so this was the acquisition process. Then in July 2025, our whole acquisition process was completed and finally we were onboarded as a board of directors. So technically we got the physical possession of the factory in July 2025. Then after July 2025 we started the production process. So initially हमारा फोकस ये था कि हम कैसे फैक्ट्री को 100% ऑपरेशनल कर सकते हैं। तो हमने 3 महीने फुल फ्लेज उसके अंदर वर्किंग्स की, सारे मशीन्स को रिवैम्प किया एंड एवरीथिंग वी डिड। ये सारा प्रोसेस करने के बाद व्हाट वी फिगर्ड आउट के डेनिम का मार्केट आगे जाके इतना एक्सपांशन मोड में नहीं है। सो आई थॉट के डेनिम में भी पॉसिबिलिटी है कि हम उतना स्केल ना कर पाए। बट नॉन डेनिम जो कैटेगरी है जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट रेंज कवर होती है, शर्ट्स, शर्ट्स, कॉटन पैंट्स, फॉर्मल पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सारी प्रोडक्ट्स का फैब्रिक्स जितना भी आता है, इवन इन द लेडीज वेयर, एवरीवेयर। सो दिस कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड दिस आर टर्म्ड एज अ नॉन डेनिम फैब्रिक्स। सो आई थॉट लेट्स पाइवोट टू द नॉन डेनिम सेगमेंट। इनिशियल स्टेज पे अगर हम ये पाइवोट कर लेते हैं तो जब फैक्ट्री को 100% ऑपरेशनल करना इजी रहेगा, प्लस वी कैन अचीव गुड नंबर्स। सो दैट्स वाई वॉट वी थॉट इज के जो 35 मिलियन मीटर डेनिम की कैपेसिटी है उसको हम कम करके 5-10 मिलियन पे ले आएंगे, 8-10 मिलियन के आसपास रखेंगे एंड जो नॉन डेनिम है उसको 18 मिलियन से 50-60 मिलियन लेके जाएंगे। यूजुअली क्या होता है ये कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में देयर इज नो हैवी कैपेक्स रिक्वायर्ड। It is a normal machinery changes and some technical specifications to be changed in the machinery. Rest everything is almost same. So जो पूरा प्रोसेस है फैक्ट्री का, जिसमें वी हैव द होल कॉम्पोजिट प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम यार्न टू रेडी फैब्रिक, दिस इज ऑलरेडी देयर इन द कंपनी. सो व्हाट वी डिड, हमने डेनिम्स 7-8 लाख मीटर पर मंथ ही बनाना स्टार्ट किया. नॉन डेनिम हमने पूरा 18 लाख मीटर बनाना स्टार्ट कर दिया. एंड देन अभी हम ये जो कैपेसिटी है इसको ड्राइव कर रहे हैं नॉन डेनिम को, डेनिम को नॉन डेनिम की तरफ. तो ग्रेजुअली ये कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. सो सपोज 1 जनवरी से व्हाट वी आर लुकिंग एट इज अ 30 मिलियन प्रोडक्शन, मतलब 30 लाख मीटर पर मंथ का प्रोडक्शन फ्रॉम द नॉन डेनिम सेगमेंट. एंड देन फिर 1 अप्रैल से 50 लाख मीटर का. सो दिस इज हाउ वी हैव प्लान्ड द प्रोडक्शन विल स्टार्ट. सो इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स द प्लान वुड बी टू मेक द फैक्ट्री 100% ऑपरेशनल. या सो दिस इज अबाउट द होल फैक्ट्री एंड एवरीथिंग, हाउ वी आर लुकिंग एट. Now, coming to our customer base and market. So usually what happens in this, we are currently focused only on domestic market. So ये जो पूरा non-denim का market है, ये mostly driven by non-organized players है. And organized players में brands आ गए, सारे domestic के बड़े institutes आ गए. Mostly it is driven by non-organized players. So we term them as wholesalers. So ये जो wholesalers होते हैं, ये सारा अभी हमारे लिए customer base है. मेरे ऑलरेडी 8-9 साल के रेफरेंसेस थे इतने सारे. वी हैड अ गुड कस्टमर बेस, वी न्यू एवरीवन इन द मार्केट. सो इट वाज इजी फॉर अस टू ब्रिंग द कस्टमर्स. एंड इनिशियली व्हाट वी आर टारगेटिंग इज, जब तक फैक्ट्री 100% नॉन डेनिम पे ऑपरेशनल नहीं होती, हम जॉब वर्क करेंगे. सो जॉब वर्क में क्या होता है, द कस्टमर इटसेल्फ गिव्स यू द यार्न और से द फैब्रिक. यू ओनली डू द प्रोसेस ऑफ डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग और वीविंग, एंड देन यू गिव द फैब्रिक. सो दिस इज वेरी, मतलब इससे क्या है, आप फैक्ट्री को एक बार 100% ऑपरेशनल कर सकते हो, क्योंकि काम मिलना आसान है. सो मार्केट से जॉब वर्क का काम बहुत इजीली मिल जाता है. सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट राइट नाउ, कि जॉब वर्क करके हम एक बार फैक्ट्री को 100% ऑपरेशनल करें, फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सेल्फ का काम स्टार्ट करके ब्रांड्स को सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट्स पे फोकस करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे. बट दैट विल बी लेटर वंस वी डू द फैक्ट्री 100% ऑपरेशनल. इफ वी डू जॉब वर्क ऑफ 50 to 60 लाख मीटर्स पर मंथ, वी कैन इजिली अचीव अ टर्न ओवर ऑफ 200 CR थ्रू जॉब वर्क, विच इज अ वेरी गुड नंबर. सो टेक्निकली 200 CR ऑफ जॉब वर्क रेवेन्यू और से 800 CR ऑफ फैब्रिक रेवेन्यू, दोनों में अगर आप कंपेयर करो तो मार्जिन 200 CR के रेवेन्यू में ज्यादा है. बिकॉज वी आर ओनली डूइंग द सर्विस पार्ट काइंड ऑफ, जो सिर्फ पूरा प्रोसेस है वही हम लोग कर रहे हैं. सेकेंड, कैश फ्लो साइकिल बहुत अच्छे से मैनेज होता है, बिकॉज योर क्रेडिट्स आर वेरी लिमिटेड. योर डेटर क्रेडिटर सिक्योरिटी इज वेरी हाई, डेटर सिक्योरिटी इज वेरी हाई बिकॉज उनका पीछे माल पड़ा होता है, कपड़ा पड़ा होता है. सो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके बेस पे हमने ये डिसीजन लिया है कि विल स्टिक टू जॉब वर्क ओनली फॉर नाउ. सो या सो दिस इज अबाउट वार वी हाउ वी एक्वायर्ड एंड देन हाउ विल बी प्लानिंग टू डू द प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग. सो इवन इवन इफ वी सी अवर Q2 नंबर्स, सो Q2 जुलाई वी केम ऑन बोर्ड एंड देन वी स्टार्टेड द फैक्ट्री इमीडिएटली. सो Q2 के अगर हम नंबर्स देखें, हमने ऑलमोस्ट 28 CR का रेवेन्यू अचीव किया था और उसमें हमारा EBITDA मार्जिन वॉज ऑलमोस्ट 50%. दिस इज मेनली बिकॉज जो जॉब वर्क का काम होता है, जहाँ पे प्रोसेस होता है, वहां पे योर कॉस्ट्स आर ओनली ऑफ कलर केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी और से लेबर, एंड ओनली दिस इज योर कॉस्ट, द रॉ मटेरियल कॉस्ट इज नॉट देयर. सो अवर एबिटा मार्जिन आर वेरी गुड एंड वी विल बी फोकसिंग द सेम वे डाउन द लाइन फॉर नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स. सो एनी नाउ कमिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो, इबिट्टा जो हमारा 50% है, उसके बाद हमारा पैट भी जो है वो भी उसी लाइन में चल रहा है. उसका मेन रीजन ही है. सो टेक्सटाइल्स का है ना, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि कोई भी कंपनी टेक्सटाइल्स में इबिट्टा तो एक बार अच्छा अचीव कर लेती है, लेकिन इबिट्टा से पैट की जर्नी बहुत खराब होती है, बिकॉज द लोन्स आर वेरी ह्यूज, डेप्रिसिएशन कॉस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट इज वेरी हाई, एंड देन द टैक्सेशन पार्ट. सो यहाँ पे वारवी के पास एक एज कहाँ आता है कंपेयर टू एनी अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल कंपनी, इज दैट द कंपनी इज अ डेट फ्री कंपनी. सो दिस दिस पॉइंट एक्चुअली हाईलाइट्स द स्ट्रेंथ ऑल्सो ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल्स. द कंपनी हैज अ जीरो डेट ऑन द बुक्स. सो द बैंक हैज बीन रीपेड. सो आवर एज पर आवर एक्विजिशन वी पेड ऑफ ऑल द बैंक लोन. सो एज ऑन डेट द कंपनीज एसेट्स आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी लाइबिलिटी. सो कंपनी इज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट कॉस्ट. तो इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो हो गया, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत मिनिमल लग रहा है, बिकॉज द बुक्स बुक्स पे मशीनरी इज ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो गई है विद इन दिस टाइम. एंड देर इज अ कैरी फॉरवर्ड लॉस, सो द टैक्सेशन कॉस्ट इज नॉट देयर. तो ये तीनों फैक्टर्स की वजह से जो इबिट्टा है वही पैट में कन्वर्ट हो जा रहा है. इन इन नॉर्मल कोर्स इफ आई एम ऑपरेटिंग एट 50% इबिट्टा मार्जिन, माई पैट वुड हैव बीन 15%, बट बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दिस थ्री कॉस्ट, सो माई इबिट्टा इज अगेन द पैट. तो इबिट्टा मार्जिन 49% के आसपास है, पैट मार्जिन हमारा ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास रहेगा. एंड ये मार्जिन हमारे रहेंगे, इसी तरह के मार्जिन रहेंगे अगले 2-3 क्वार्टर्स तक. उसके बाद थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है बिकॉज स्केल करेंगे, फिर वो परमानेंट मार्जिन रहेंगे जो हम सेल्फ का काम करेंगे, बट इवेंचुअली उससे टर्नओवर बढ़ जाएगा. जो मार्जिन कम होगा टर्नओवर बढ़ेगा, तो जो पैट है वो तो उससे बेटर ही आएगा, जो अभी हम लोगों ने Q2 या हम Q3 में देने वाले. सो या सो दिस इज अबाउट द कंपनी. नाउ हाउ वी सी दिस कंपनी एज इज, सो व्हेन आई डिड द एक्विजिशन ऑफ आरवी डायनेम्स, दिस वाज ओनली अ टेक्सटाइल कंपनी. द कंपनी वाज ऑपरेटिंग, नॉट ऑपरेटिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी बिकॉज द ओल्ड प्रमोटर्स हैड देयर ओन इश्यूज विद फाइनेंसिस एंड एवरीथिंग. सो व्हेन वी एक्वायर्ड दिस कंपनी, व्हेन आई पर्सनली एक्वायर्ड, आई विथ माई दिस 9 to 10 years ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, आई न्यू वन थिंग दैट इफ आई डू जॉब वर्क एंड आई फील इफ आई वर्क ओनली इन द नॉन नॉन डेनिम कैटेगरी, आई कैन क्रिएट गुड नंबर्स, आई कैन रियली मेक गुड प्रॉफिट्स. सो विद दैट गोल आई एक्वायर्ड. एक्विजिशन के बाद हमने ये रियलाइज किया कि हम इसको और भी बड़ा कर सकते विथ थिंकिंग विद अ वेरी ब्रॉडर विजन. सो जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है लाइक स्टिच टेक्सटाइल्स लिमिटेड विच इज अ बार्सिलोना ब्रांड और द अदर यार्न ट्रेडिंग बिजनेसेस, वो सारे बिजनेसेस से ये काफी बड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्केल इट 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 कैन हैव एंड द प्रीमाइसेस. इट हैज अ 60,000 स्क्वायर यार्ड लैंड, सो देयर इज अ ह्यूज प्रीमाइस टू स्केल द कैपेसिटी टू अप टू 80-90 लाख मीटर्स पर मंथ, इतना स्केल करने का. वी हैव द पॉल्यूशन परमिशन एज वेल, सो वो भी एक एडवांटेज है इसके 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 अंदर. नाउ तो व्हेन वी एक्वायर दिस कंपनी द गोल वाज ओनली टू कीप इट एज अ टेक्सटाइल कंपनी, बट अभी लास्टली व्हाट वी हैव रियलाइज्ड, वी वांट टू मेक इट एन एंटरप्राइज कंपनी, नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ टेक्सटाइल कंपनी. दैट इज हाउ द नेम चेंज आल्सो केम इनटू प्लेस. सो प्रीवियसली इट वाज अ डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नाउ वी हैव मेड इट वारवी ग्लोबल लिमिटेड. सो द नेम चेंज क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन मेनी अदर डिफरेंट वर्टिकल्स, मे बी वी एंटर इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज वेल. एंड सो डाउन द लाइन 3 to 5 years, this company will might turn out to be an enterprise company having many other verticals in itself and not just limited to a textile company. For the next 3 to 4 quarters, we will be focusing only on making this company 100% operational with its production capacity and trying to get good internal accruals, which can then be further invested to enter into different verticals. So, yeah, this is about the company, Shankini. Anything else you would want me to brief if I forgot something?
No, I think that was great and very comprehensive. So what we'll do now is we'll open the floor for some questions. I'll just remind our participants, if you'd like to ask a question, this is how you'd raise your hand to join the question queue. If you're on desktop or laptop, look for the reactions button at the bottom of the Zoom window. Click on it, then select raise hand from the options. Your name will appear in the queue and I will call on you. If you're on mobile or tablet, tap on the More dot 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 button at the bottom right of your screen, then select Raise Hand from the menu. Perfect. So we'll start with some written questions that our participants have submitted, Jaimin. So the
Right.
first question is submitted from the line of Vivek Sharma. So Vivek is asking, if Q2 performance is showing good 50% EBITDA margin, is this repeatable or one-off?
So I mentioned this in my conversation also, Shangini. So basically जो हमारा EBITDA मार्जिन है 50% का, वो कंटिन्यूअस रहेगा बिकॉज हम लोग जॉब वर्क कर रहे हैं. मतलब एनी इन्वेस्टर वुड हैव अ वेरी क्लियर कट थॉट प्रोसेस दैट हाउ इज इट पॉसिबल अ टेक्सटाइल कंपनी गेटिंग अ 50% EBITDA मार्जिन कम्पेयर टू एनी अदर पीयर, बट दिस इज बिकॉज वी आर ओनली डूइंग जॉब वर्क. आई टेल यू इन वेरी शॉर्ट व्हाट इज जॉब वर्क एंड व्हाट इज सेल्फ. सो कोई भी कंपनी टेक्सटाइल का होता है, व्हाट दे डू इज दे बाय यार्न, दे मैन्युफैक्चर द होल फैब्रिक एंड देन सप्लाई. सो 50 रुपए का यार्न खरीदा, पूरा प्रोसेस किया, 150 रुपीज में उस फैब्रिक को बेचा. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो 50 रुपए का यार्न कस्टमर ही बेचता है, दे डोंट बिल अस. हम सिर्फ 70-80 rupees का जो भी कन्वर्जन रेट है हम वो चार्ज कर रहे हैं, एंड देन वी गिव द फैब्रिक बैक टू द कस्टमर। सो जो रॉ मटेरियल का जो पूरा कॉस्ट है वो यहाँ पे लगी नहीं रहा है, इसीलिए हमारे एबिटा मार्जिन आया है। सो यस दिस कुड श्रिंक टू मे बी बिलो अप्रोक्स 40-45%, बट नॉट बिलो दैट। सो दिस वुड बी अ कंटिन्यूअस मार्जिन रेट्स एनीवेयर बिटवीन 45-50%।
Thanks for that, Jaimin. That was very valuable. And I think we have a follow-up as well. So the follow-up question is, what exactly, can you give us more detail of what exactly changed post-acquisition? And what are the 4 to 5 moves that are driving our reset? And how do you see them giving us material benefits in the near term?
So mainly the previous promoters who were operating the factory, they were stuck with the finance part, so they couldn't manage the, and they were having a huge interest costs, so it was not practically viable for them also to run the factory. So after the acquisition, what we have done is, firstly, we are not having any bank liability, so our interest cost is not there. That gives us an edge to operate the factory at lower margins. So this is one factor. Second, we have done some serious technological and machinery changes. Machinery changes from denim to non-denim category. So we have shifted the product itself. The previous management used to sell denims. We are selling shirts and cotton pants. So the product differentiation itself has created this posting of good numbers. So mainly, when we pivoted from the original core product, this was one good thing which the team and we have done very well. Second is we did some technological changes, the ERP integration, real-time data analysis. So we have done all of that. We have implemented the ERP in the whole production process, giving us live data. So what happens is we can achieve the maximum output with this and avoid any irrational losses in production. So this is which makes sure that we are constant with our margins. Third, we are purchasing. Our purchasing has improved. We are purchasing in cash. So in cash means on 7 days, 15 days payment. So which gives us a very good edge over the margins. In textile, anyone who's purchasing on a 60-day credit will get a 5-7% discount who's purchasing on 15-day credit. So that's a clear term in the market. We have infused that funds from our own self. And we have made sure that margins remain with the company despite our cash flow being more involved in the business. So these three, four changes have eventually resulted in achieving these margins.
Thanks, Jamin. So we have another written question and we see some hands raised as well. So I'll just take this written question first. The question is from Mr. Vikram Suryavanshi. Jamin, what is total capital expenditure for conversion of capacity? What is our revenue per meter?
सो बेसिकली जो नॉन डेनिम से नॉन डेनिम का जो कन्वर्जन आएगा ना, दैट वोंट रिक्वायर मोर देन कैपेक्स ऑफ मोर देन 10 CR, एंड जो 10 CR का जो कैपेक्स भी लगेगा दैट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ द नॉट रिक्वायर्ड मशीन्स। सो देर वोंट बी एनी इन्फ्यूजन ऑफ न्यू फंड फॉर ड्राइविंग दिस चेंज। दैट कैन बी डन फ्रॉम द इंटरनली अवेलेबल मशीन्स इटसेल्फ, सेलिंग सम मशीन्स, बाइंग सम न्यू मशीन्स। ठीक है, सो एनीवन हु हैज अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मशीनरी और टेक्सटाइल्स कैन इवेल्युएट हाउ इट कैन बी डन विदाउट इन्फ्यूजिंग एनी फंड्स। सो फॉर दिस ट्रांजिशन वी आर नॉट इन्फ्यूजिंग एनी फंड्स, वी वोंट इट वोंट बी रिक्वायर्ड। सेकेंड ऑन द पर मीटर, सो व्हाट हैपेंस इज इफ वी डू द होल प्रोसेस, वी बाय द यार्न एंड देन वी सेल द फैब्रिक, द रेवेन्यू बुक पर मीटर वुड बी अप्रोक्स 200 रुपीज। बट इफ यू डू ओनली जॉब वर्क पार्ट, द रेवेन्यू बुक वुड बी ओनली 70-80 रुपीज पर मीटर। So, if we consider ourselves as we would be doing only job work, we can expect a revenue booking of 70-80 rupees per meter with this non-denim category.
Thanks, Chairman. We'll take a question from a participant now. The participant asking a question is from the line of Sneha Singh. Sneha, you can unmute yourself and go ahead and ask your questions.
Good evening, everybody. This is Sneha here. I'm an individual investor. I have a couple of questions. My first question is, what exactly changed operationally post-acquisition What are the four, five moves that drove the reset?
So, as I mentioned, Sneha, previously also the post acquisition, the major changes which came were the operational expertise of running a factory, kind of. So, having purchases on the right credit terms at good pricing, having a good team on the production floor, taking care of the, so the previous management didn't have the live data analysis as well of the production process. So we made sure that, so we invested the money at the right place to make sure that we save margins at each point, at the production point, at the costing point, at the sales point. So we post acquisition, the implementation of such steps has resulted into achieving these margins. So revenue achievement in this segment is not a big deal. If I say I'm doing job work, my production capacity is 20 lakh meters per month, so I'll easily get that business. But to make sure that I achieve the EBITDA and PAT margin, we have to implement this, all of this, that you don't do production loss, you don't do heavy costing buying, your sales should be at the good pricing, your overall management of the to make sure that there's no production value loss, XYZ things. So implementation in the right way of all of these things resulted in achievement of good EBITDA margins, and not focusing on the denim category. So if we would have focused on the denim category itself, it is might be possible that we would have also not achieved these numbers. We are focusing on non-denim category, and non-denim category has a very huge market because it covers all the products. So shirts, cotton pants, even ladies wear, all the products are covered under the non-denim category. So this is the main reason.
Sure.
Post-acquisition, we were able to achieve these numbers.
Okay, I have another question. If you
Yes.
scale non-denims, what happens to the margins? Do they hold or improve or normalize?
So the margins which we have po posted in quarter two, that will be the margins itself that will remain constant for the next 2 to 3 quarters. Might be possible once we scale, our margins might shrink to 5 to 7% on the EBITDA side. But overall, as I mentioned earlier, also the EBITDA to PAT journey. So our PAT will always be good compared to any other textile company because of the advantages we are having in the part of interest, depreciation, and taxation.
Right. So I just have one last question. The cash appears, low versus profitability. What is the cash con you know conversion plan and working capital strategy?
So as we are doing job work, Sneha, the cash flow cycle is the working capital is not much required because your only investment comes into the raw materials of color, chemicals, and coals. The whole value chain, from the whole value chain point of view, your investment in the raw material is very limited because the core raw material is itself supplied by the customer to get the job work done. And for us to achieve 100 CR of revenue annually, the working capital cycle is not required more than 15 to 20 CR, which we have initially infused in the company. And from 100 to 200, we might be looking for a CC or something. We might go with the bank, but we always have that availability of going to the bank because currently the bank debt is zero. So even if we are in a cash, even if the company requires cash, or even if the company requires working capital to scale the big business, the company has a banking facility available at any time. They can avail that.
All right. Thank you so much for the opportunity.
Thank you. Thank you.
Thanks for your questions, Sneha. Thanks for your answers, Chairman. We have some written questions come in from the line of Pritesh Vora. So Pritesh wants to more know more about how the change in management occurred and what we're doing about debt. And looking at the debt pattern over the last 2 year frame, he'd like you to comment on that, as well as talking about the terms and conditions of the company acquisition, and what your intentions are for the near term.
So originally the company, the original promoters were in huge debt with this company. So the debt was of more than about 300 crores. And so that was settled by the old promoters itself. It was not settled, it was fully paid up by the old promoters itself from their internal accruals or maybe some of the other assets which were the company had. So that was part of the old management. When we took over, as per our deal, the bank debt had to be we had a limited bank debt which we had to take over, and that debt also was repaid by us as from our internal accruals. So infusing into the company and then paying it to the bank. So as on date, the bank debt is zero. We can't discuss more on the previous debt because that was handled all by the previous management. And the new management came in June, July 2025. So the new management came as per our SPA, which was signed in September, and the SPA is also available on the public domain. So as per the exchange filings, so yeah, so this was this is how we came into the management.
Thanks, Jamin. And Pritesh, if you have any more follow-ups, you can write in your questions. We'll take a question from the line of our participant, Dharmesh Pawar. Dharmesh, you can go ahead and unmute your line and ask your questions. Hi, Dharmesh. You can go ahead and unmute yourself and ask your question. I think he's having some trouble with his audio. So we will move on to some more written questions in the meantime. So, what is our spinning capacity, Jamin? Can you go through in detail actually what our weaving, spinning, and processing capacity is?
So we don't have spinning as on date within the company. Our core starts with the weaving part. So spinning basically produces yarn, and then yarn is supplied to the weaving department. That weaving department produces the fabric, raw fabric, and then it goes to the process department where it is dyed, finished, printed, XYZ, and supplied. So the company doesn't have any spinning plant, and we do not even intend to go into that division because we feel that when we are doing job work, so the raw material has to be supplied by the customer itself. So we don't have to infuse any money, or we don't have to look into that segment. Spinning is basically the production of yarn. So yarn is our raw material, and we won't be going into spinning anytime. For the weaving, the company has a production capacity of 30 to 35 lakh meters per month.
Thanks, Chairman. So I think Dharmesh Power has informed us that he would like to ask his question now. Dharmesh, you can unmute your line and go ahead and ask your questions.
Am I audible now correctly?
Yes, please go ahead.
My question is regarding our future plans. What is your CapEx plan to scale denim or non-denim? And how would you plan to fund it? Are you willing to raise any further equities or debt?
So we will be focusing on non-denim only. डेनिम पे हमारा इतना फोकस नहीं है. डेनिम हमारा 5 लाख मीटर का जो कैपेसिटी होगा, 5 से 8 लाख मीटर, 8 मे बी 8-10 लाख मीटर हम उतना ही रखेंगे. बाकी हमारी पूरी कैपेसिटी को हम नॉन डेनिम पे शिफ्ट करेंगे. हमने ऑलमोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है. तभी हमारा 1 जनवरी से जो नॉन डेनिम है उसका कैपेसिटी 30 लाख मीटर्स हो जाएगा, और 1 अप्रैल से इट विल टर्न एनीवेयर बिटवीन बी 50 to 60 लाख मीटर्स. सो इसमें आई प्रीवियसली ऑल्सो मैंशन धर्मेश जी, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फ्यूजिंग एनी फंड्स. द फंड्स द मशीनरीज जो इसको चेंज करने में, सो वीविंग मशीनरीज आर टू बी केप्ट सेम. इफ यू मैन्युफैक्चर डेनिम, नॉन डेनिम, एनीथिंग यू मैन्युफैक्चर, वीविंग मशीन सेम होती है, छोटे मोटे चेंजेस होते हैं. मेनली जो मशीन में चेंज आता है वो डाइंग और प्रिंटिंग साइड पे आता है. तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग डेनिम की डाइंग प्रिंटिंग मशीन है वो सेल होके नई नॉन डेनिम की डाइंग और प्रिंटिंग की मशीन आ जाएगी. वहां पे कहीं पे भी नया कैपिटल इन्फ्यूजन रिक्वायरमेंट नहीं आएगा. मशीन्स में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने, तो उसके लिए जो भी मतलब इट इज काइंड ऑफ अ मेंटेनेंस कॉस्ट विच द कंपनी विल बेयर, दैट वोंट बी मोर देन 4 to 5 CR. द मेंटेनेंस कॉस्ट पार्ट दैट एक्चुअली विल द कंपनी विल हैव टू बेयर, द रेस्ट कॉस्ट वुड बी द रेस्ट कॉस्ट ऑल वुड बी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मशीनरी इटसेल्फ.
I have one more follow-up question for you. customer concentration and credit risk related. How diversified is the customer base, and what guardrails exist to avoid WC hurdles, working capital hurdles?
सो एज ऑन डेट ऑल्सो इफ 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 यू लुक जो अभी हमने चालू किया है तो देर इज नो नॉट अ सिंगल कस्टमर विथ मोर देन 15% ऑफ द करंट सेल्स. सो इफ यू सी वी हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस. मतलब अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट देर आर 25 to 30 कस्टमर्स हु आर डूइंग प्रोडक्शन इन अवर फैक्ट्री. सिंगल कस्टमर पे एक दो जो बड़े हैं उनका 15% तक होगा, 12-15% के आसपास. बाकी मेजरली सब 5-7% का कॉन्सेंट्रेशन होगा पर सिंगल कस्टमर. सो इट इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड इन द पॉइंट इन द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड एंड वी आर वेरी मच क्लियर कि हम कोई भी कस्टमर में 15% ज्यादा का कॉन्सेंट्रेशन नहीं क्रिएट करेंगे. सो दैट इज क्लियर फ्रॉम अवर एंड. सेकेंड क्वेश्चन दरवेज, आई डिडंट गेट योर सेकेंड क्वेश्चन.
This was regarding the working capital. Do you see any stress on working capital, or what are the
So
credit?
I think we don't require any working capital up to 100 crore revenue. Post that we might require working capital to achieve a turnover of 200 crore, which we are targeting from the first quarter financial year 26. So 26-27. So for that we have this banking facility available that we can take anytime because currently the bank there's zero bank facility. So if required we might take a banking facility of anywhere between 20 to 30 crore.
That's very good. That's all from my end. Thank you.
Thanks for your question, Sarmesh, and thanks, Jamin, for answering. Jamin, we have a written question in from the line of Dhruv Sheth. So Dhruv wants to know, I would say on the whole, what is our vision, say for the next 5 years for Varvi Global Limited, and what can investors look forward to?
So as I mentioned earlier also, the company RV Denims and Exports Limited had a market image that it's a textile company. After our acquisition, we have made it clear within our team, within our stakeholders, that this won't be a textile company any longer. Maybe for a year, it might look like that our revenues are only coming from the textile segment. But down the line, if we talk about 5 years, the goal is very very simple. We have to make this an enterprise company where the company has many other verticals under it, maybe into the infrastructure sector, maybe into the renewable energy sector, maybe into chemical sector, because all the materials which are being procured by us can always be backwardly integrated within our company itself. The company has a huge space. And so once the for the first year, if we achieve the good numbers as we are forecasting from the textiles and we have good internal accruals, we will be further investing this in backward integration of different auxiliaries. Maybe it can be a chemical, maybe it can be a machinery, so anything. So down the line, every year, if we keep growing ourselves with different verticals, with different industries, after 5 years, the company might be an enterprise company having multiple businesses, having multiple revenue segments. So I personally have the vision of creating it as an enterprise company, not a textile company.
That's very interesting, Jamin. Thanks for sharing your vision.
Thank you.
And I think we have one question that's coming in as writing from the line of Rakesh G. So Rakesh wants to know, can you give us more insight on tailwinds? Can you tell us more about macro tailwinds and how we plan to capitalize on them?
तो यूजुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो टेलवेंस आते हैं दैट आर मोर मोर सीजनल्स काइंड ऑफ लाइक जब फेस्टिवल्स आते हैं तब थोड़ा सा मार्केट में बूम होता है और उस तरह के टेलवेंस होते हैं. तो यूजुअल केसेस में बीइंग अ मैन्युफैक्चरर वी कैन नॉट ऑलवेज कैपिटलाइज द टेलवेंड बिकॉज जब बेयर मार्केट होता है तब भी ऑल्सो वी नीड द सपोर्ट ऑफ अवर कस्टमर्स to make sure the factory is running. So as a long standing point of view, if we see we cannot act as if 2 quarters are very good, 3 quarters are not good, 2 quarters are not good. It is not going to be like that with us. We will be more focused on a inline and consistent targets and consistent numbers. So this would be the focus. Then after, when there is a tailwind in the whole industry, so maybe we can see that way, that if there's a deal announcement between India and US, so this might be a tailwind movement for the industry itself, because we have huge exports to European and US markets. So if this happens, the trade deal happens, then there could be a tailwind situation in the industry. We can easily capitalize that through. It is very simple for us, because once we have the raw material in our factory for next 2 to 3 months, so हमारा अगर प्रोडक्शन 2 3 महीने के लिए फुल है, तो हम ऑब्वियसली प्रीमियम चार्ज करेंगे जब हम फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ का प्रोडक्शन आउटपुट ले रहे हैं आज की डेट में. सो जब वो सेगमेंट आता है, जब वो टेलवेंड आती है, तब वी सी अ स्पाइक ऑफ 10 to 15% इन आवर प्राइजिंग. एंड दैट यूजुअली हैपेंस से 1 or 2 months इन अ ईयर, और से मैं से अ क्वार्टर इन 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 4 to 5 quarters. सो या वी विल बी डूइंग दैट विद इंक्रीजिंग अवर प्राइजिंग वंस वंस वी सी अ टेलवेंड सेक्टर. For anything else like increasing the expansion, मतलब doing increasing the capacity or doing the expansion, that is not something we are looking right now, because we already have a good capacity that we are pivoting from denim to non-denim. And later on, we will be looking to enter into different other industries rather than just scaling this industry.
Thanks, Jamin. And can you also tell us a little bit about the team that is working under you and is part of the new Varvi Global brand and initiative?
So with us right now, we have two main people who have joined us. So there's Mr. Tarak Agrawal, who is also the director in the company. He's looking after all of the production. He has more than 20 years of experience in running such kind of factories. So he has the whole control over all the production processes, all the chemicals, all the purchasing, costing, and everything. I am personally taking care of all the finances and strategical decisions. So all the accounts, costings, and everything are being controlled, are being directly controlled by me. The whole production, customers, purchasing is controlled by Mr. Tarak. And then there's our CFO, Jignesh, who's a well-qualified chartered accountant from Ahmedabad itself. So he has good understanding of cost sheets, working out maximum margins, understanding where we are having value losses, how we can improvise on different costs. So all this, we three are mainly the right now who are trying to scale this whole company. And we have our different agendas and different understandings, different roles. This is the main core. Then there's a whole professional team who's taking care of the daily operations of the company. So they are all minimum 10, 15 years of experience. Some people who used to previously work with the old management, they are with the company since 10 years, 12 years. So we interviewed all of them again. We took interviews of more than 200 people. Out of that, we kept about 60, 60, 65, and the rest new hirings were done. If we see as on date also, we are having more than 200 team of more than 200 on the executive level, and then there will be more than 2,000 on the contract labor side.
Thanks for that detailed answer, Jamin. I think before we get into your closing remarks, I think I'd like to thank everybody who's attended our call today. Thank you for all your questions, and we'll definitely take any more follow-ups. So please feel free to write to us at Dickinson, and we'll be happy to get all your questions answered from the management and from Jamin. So before I hand over to Jamin for your closing remarks, please also answer the short feedback survey that we'll share with you at the end of this call. So thank you so much, everybody, for your time today. And thanks to Jamin as well for sharing your insights and giving us your vision and showing us what the new leadership at the helm of the company has in store for Varvi Global Limited, not only for core fundamental growth in the textile space, but also your vision as an enterprise platform going into the near to medium to longer term as well, as opportunities should arise. So on that note, Jamin, I'll hand over to you for your closing remarks, and then we can conclude for the afternoon. Over to you, Jamin.
So, firstly, I'd like to thank you, Shankini, for such a beautiful introduction. Now, coming to the closing remarks, so I'd like to thank everyone for joining this call, and it was my I feel this as more my responsibility to answer to all my stakeholders, and we will be happy to discuss anything anytime if anyone wants to know in deep. So we are always available, even factory visits, even anyone wants to have a look at the whole unit, everything is always available, and we will be rather more excited in showing them the factory and all the processes which we are doing on the closing side. So the team is very young. They have a very good vision. Along with being young, they have a good experience as well. I personally have more than 12 years of experience in textiles. So we understand how to scale this business. We understand in depth of the fabrics and garments, about the markets and everything. So yeah, I'll be very happy hosting anyone who's looking forward to look at the factory. And we have great vision. Let's see how market reacts and how people support us. So yeah, this is it.
Thanks so much for your time today,
Thank
Jaimin.
you.
Thanks to all our participants. Please have a very pleasant afternoon. On
Thank you.
behalf of Varvi Global Limited, we may now disconnect our lines, and thank you.
Thank you.